आत्मानुशासन लेक्चर नंबर 74। ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सौवसाहूणं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। पूज्य श्री गुणभद्र आचार्य रचित यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है, जिस पर क्षुल्लक मनोहर जी वर्णी जो सहजानंद जी उनके प्रवचन हुए हैं, और इस आत्मानुशासन प्रवचन पुस्तक दूसरी पृष्ठ संख्या 52 पर हम आगे 52 यह नीचे से दूसरा पैराग्राफ है, वहां से पढ़ेंगे। भविष्य की हैरानी। भैया यहाँ जितने समागम है ये सब विनेश्वर है, समागम ही कहीं समागम है, संयोग है, तो जहाँ संयोग है वहाँ उसका वियोग तो निश्चित है, क्योंकि संयोग शब्द ही सूचित करता है कि अभी जुदे जुदे पदार्थ है और अभी इकट्ठे है, वो एक में एक हुए नहीं है। तो हाँ वो तो मर्यादित मर्यादा सही थी, वो उनका संयोग होता है, यही कह रहे यहाँ पर। चंद दिनों के लिए मिट जाएंगे, अपना यहाँ कुछ नहीं है, यानी पदार्थ भी है हम भी है, परंतु हमारा ये जो हमने उसमें नाता जोड़ा है वो बात नहीं होती कि अपना यहाँ कुछ नहीं है, पर इन भिन्न पदार्थों का आश्रय करके उनको उपयोग में लेकर जो राग द्वेष की वृत्ति बनाई जाती है यह भविष्य में हैरान करेगी। ये अपने में वृत्ति का उठना राग या द्वेष का, हाँ वही अपनी हैरानी। हाँ क्योंकि अपने आश्रय से कैसे राग द्वेष उत्पन्न होगे, पर के आश्रय से होगे, उपयोग उसमें जाता है, उसमें इष्टनिष्ठपना चल रहा है मान्यता में भी, इसलिए राग द्वेष भी हो रहे हैं। चीज तो नष्ट हो जाएगी, जिस वस्तु के बीच राग किया जा रहा है वह वस्तु तो बिगड़ जाएगी, वह तो विनश्वर है। पृष्ठ संख्या 52। यहां देखेंगे ये नीचे से दूसरा पैराग्राफ हम पढ़ रहे थे, बात ये हो रही कि जितने समागम है सब विनश्वर है, और परपदार्थों का आश्रय करके जो उसको उपयोग में लेकर राग द्वेष करते हैं वही हमें भविष्य में हैरान होते हैं। हम चीज तो नष्ट होगी जी, क्योंकि चीज यानी जो वो संयोग में जो कुछ है वो तो नष्ट होने वाली बातें हैं। जिस वस्तु के बीच राग किया जा रहा है वह वस्तु तो बिगड़ जाएगी, क्योंकि वो विनश्वर है, क्योंकि हम किसको देख रहे हैं, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा जिनको राज देख रहे हैं वे तो पुद्गल है, वे तो संयोगी चीजें हैं, वे कुछ द्रव्य नहीं है, एक सिंगल के बिगड़ नहीं जा सकता, इसलिए कहते बिगड़ जाएगी। हाँ ये पेज नंबर 52 नीचे से दूसरा पैराग्राफ। हाँ फिर से पढ़ते इसको। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, भविष्य की हैरानी, यहाँ से फिर दोबारा पढ़ते हैं। भैया यहाँ जितने समागम है ये सब विनश्वर है, चंद दिनों के है मिट जाएंगे, अपना यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि सारे पर पदार्थ प्रत्येक पदार्थ जुदा जुदा है, किसी का कोई नहीं है, पर इन भिन्न पदार्थों का आश्रय करके उनको उपयोग में लेकर जो राग द्वेष की वृत्ति बनाई जाती है यह भविष्य में हैरान करेगी। चीज तो नष्ट हो जाएगी, जिस वस्तु के बीच यानी उसके प्रति राग किया जा रहा है वह वस्तु तो बिगड़ जाएगी, वह तो विनश्वर है, पर उस वस्तु का आश्रय करके ख्याल में लेकर जो राग बनाया गया है यह राग भव भव में हैरान करेगा, क्योंकि उसकी वो तो निमित्त रूप से कर्म बनते होते हैं, उसके उदय में फिर ऐसे वो तो चलता है रहता है, विशेष साइकिल जिसको हम कहेंगे। यह जीव इस पुद्गल का आश्रय तो इसलिए करता है कि मुझे सुख हो, मुझे सहारा मिले, पर यह पुद्गल मिट जाएगा क्योंकि स्कंधों को ही हम जानते हैं, वो तो अन्य रूप से हो जाएंगे, दूर हो जाएगा, और इसके प्रति किया हुआ जो मोह है यह मोह परिणाम भव भव में दुख का साधन बनेगा। वस्तुएं तो चली जाएगी, वो तो अपने स्वयं के कारण हमारे संयोग में आई है, स्वयं के कारण चली जाएगी, और हम व्यर्थ का राग द्वेष करते हैं। मोक्षमार्ग प्रकाशक में वो पागल का उदाहरण दिया है ना, वो बैठा है नदी के उस पार, राजा की सेना आती है, पड़ाव डालता है, अरे ये मेरे हाथी मेरे घोड़े मेरे दूसरे दिन चले जाते हैं, मेरा हाय मैं लुट गया। हाँ, तो ये तो हमारी परिस्थिति हो रही उसकी तो उसका पागलपन ख्याल में आता है क्षणिक गलती का चिर दुष्परिणाम, गलती क्षणिक है और उसका दुष्परिणाम चिरकाल बहुत लंबे काल तक, क्योंकि एक समय में बंधे हुए जो कर्म जो अलग अलग समयों में उदय में आते हैं, ये हमने पहले कर्णानुयोग में देखा था। किसी क्षण तीव्र मोह करने के कारण इस जीव को 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का मोह ममता का बंधन हो सकता है, यानी मिथ्या तो कर्म बनता है। देखिए गलती तो एक सेकंड को की, सेकंड भी नहीं वो समय है, परंतु समझाने के लिए लोगों को स्थूल, हाँ हाँ, पर एक नहीं नहीं एक समय का इतना है, पर एक सेकंड की गलती में इतने कर्मबंध किए इस जीव को अब 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक दुखी होना पड़ेगा। एक सेकंड की गलती में कितने समय तक के लिए कर्मबंध जाते हैं और इस संसार में रुलना पड़ता है, कर्म बंध जाते हैं। चाहिए बीच में। इसके लिए कल्पना करो कि 2000 कोस का लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा हो, एक योजन कहते हैं ना, एक योजन यानी 4 कोस, और इसको 500 गुना करना है, महायोजन की बात है इसलिए। तो 2000 कोस का लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा हो और उसमें बहुत छोटे छोटे रोम के टुकड़े जिनका दूसरा भाग न हो सके भर दिए जाए। अब ये तो बहुत स्थूल कहा, ये तो हम उत्तम भोग भूमि के न्यू बॉर्न ऐसा कहते हैं ना, वो उसकी इतने मिनिमम पॉसिबल थिन वाले वो लेने हैं, चाहे हाथी फिरा दिया जाए जिससे वो खूब ठस जाए। अब 100-100 वर्ष में एक एक रोम का टुकड़ा निकाल निकाल कर बाहर करे तो कितने वर्षों में वे सारे रोम खाली हो गए इसकी कुछ गिनती नहीं है। इतने समय का नाम है व्यवहार पल्य, और उससे असंख्यात गुना समय लगता है उसका नाम है उद्धार पल्य। यानी एक्चुअली जो व्यवहार पल्य का समय में गिनेंगे अगर हम उसको, या रोम खंडों में भी गिनेंगे, तो उससे असंख्यात करोड़ वर्षों के समयों से गुना है। क्योंकि यहां तो 100 साल के बाद हम एक रोमखंड निकाल लें, पर 100 साल में समय कितने हैं उसको गिनना है, ख्याल में है ना। व्यवहार पल्ले केवल संख्यात संख्या नहीं है, रोम भले संख्यात है, रोमखंड संख्यात है, पर 100 साल के बाद एक रोमखंड निकाला है, एक सेकंड में असंख्यात समय है, तो 100 वर्षों में होगी ना असंख्यात समय मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रोमखंड, तो वो भी असंख्यात की संख्या है। व्यवहार पल्य भी उससे उधर पल्य असंख्यात गुना, और उससे भी असंख्यात गुना समय लगे, उसका नाम है अद्धा पल्या। अब ये तो क्या रेगुलर बहुत स्थूल बताना है ना, तो इसलिए असंख्यात गुना कह दिया। व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य और अद्धा पल्य। हम जो कर्मों की स्थिति आयु नापते हैं, ऐसे दस कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्यों का एक अद्धा सागर होता है, उसमें नापते हैं। ऐसे एक करोड़ अद्धा पल्य में एक करोड़ अद्धा पल्य का गुणा करे तो वह हुआ एक कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्य। ऐसे दस कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्य का नाम एक सागर है। एक करोड़ सागर में एक करोड़ सागर का गुणा करे उसका नाम है कोड़ा कोड़ी सागर। दस कोड़ा कोड़ी सागर का पल्य का एक सागर और ऐसे दस कोड़ा कोड़ी सागर या एक कोड़ा कोड़ी का अर्थ होता है एक करोड़ गुना एक करोड़, और ऐसे सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर तक के लिए बंध जाना पड़ता है एक सेकंड की गलती में, एक सेकंड ने एक समय की एक, क्योंकि प्रति समय बनता है ना, हो सकता है किसी समय ऐसा इतना तीव्र बंध हुआ हो। काय में, काय ने शरीर में पवित्रता व अपवित्रता की दृष्टि। अब सोच लो कल्याण की दृष्टि से तो यह नरदेह पवित्र काय है, शरीर है, अन्य शरीरों से आत्म कल्याण का साधन नहीं मिलता और इस नरदेह से आत्म कल्याण का साधन मिलता है, क्योंकि देव भी चौथे गुण स्थान तक का ही पुरुषार्थ कर सकते हैं, तीरंज पांचवे तक का, परंतु नरदेह से तो यहां से मुक्ति मिल सकती है। इस सारे शरीर में जिसका वजन करीब डेढ़ सवा मन है, इतने वजनदार शरीर में कोई तिल के दाने बराबर भी सारभूत मैटर है क्या? हड्डी, खून, मांस, मज्जा, पीप, चाम, रोम, नाम आदि है। नाम क्या है? कोई भी बात ऐसी नहीं है कि कुछ भी पवित्र हो। पशुओं के तो दांत भी काम आते हैं, हड्डी भी काम आती है, खाल भी काम आती है, यद्यपि वे भी ऐसे ही अपवित्र है पर कुछ काम भी आते हैं। मनुष्य का शरीर तो मरने के बाद कुछ भी काम नहीं आता, सारा शरीर इसीलिए जला देना पड़ता है। काम आने की बात तो जाने दो, यदि यह शरीर ऐसे ही पड़ा रहे तो उल्टा जनता को क्लेश हो जाता है, दुर्गंध फैले, बीमारी फैले। ऐसे इस गंदे शरीर को हम आप लादे फिर रहे हैं, इस पर भी इस देह को निरख कर अभिमान में फूले जा रहे हैं। पहले देह कैसा है उसका वर्णन करते हैं और हम उसी में मोहित होके यानी वही मैं हूं मानकर घूम रहे हैं। कल वो बात आई थी ना, उसी 47 शक्तियों में गुरुदेव कहते हैं पवित्र तो आत्मा है, उसकी अनंत शक्तियां हैं। वहां तो ऐसा कहा कि तीर्थंकर गोत्र बनता है, नाम कर्म बनता है, वो भी अपवित्र है क्योंकि कर्म का बंध है, वो इटसेल्फ अपवित्र है, क्योंकि बंधन तो पवित्र कैसे हो सकता है। आत्म कर्तव्य। भैया जो देह बिगड़ जाएगा उस देह का ख्याल कर यानी करके अपने को मोह राग द्वेष में फंसा लेना और सागरों पर्यंत कर्मों को बांध लेना, यह तो कोई विवेक का काम नहीं है। तब क्या करें? यानी लौकिक में तो बहुत स्याना है, विवेक इतना समझता है कि अरे यानी बोले कितना गुस्सा भी आया तो जो विरुद्ध जो ऐसे जो दंड पात्र गुना है वो तो नहीं करेगा ना, इतना तो करने के लिए वो तो विवेक करता है। अरे उसकी तो जान जाएगी मगर तुम जेल में सड़ोगे, ऐसा कहते हैं ना। तो हाँ, जो बहुत अंधा हो जाता है कशाम का वो तो कर ही डालता है, परंतु थोड़ा विचार करने वाले सोचने वाले थोड़ा काम लेते हैं विवेक से। यहाँ तो कहते हैं कि ये देह को अपना मानकर ये सागरों तक कर्मों का बंध कर लेता है, यह तो कोई विवेक का काम नहीं है। वो कोई ऐसा लगता ही नहीं ना हमने कुछ बड़ा पाप किया है। बाकी तो लौकिक दंड ख्याल में आते, अरे वहां तो क्या, हाँ जेल में जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फांसी हो जाएगी, परंतु अपन वो तो एहसास होता नहीं, उसका एहसास नहीं हो रहा, ये कह रहे। कैसे इन संकटों से और दुष्कर्मों से छूटे? उपाय एक ही है, अपना जो सहज स्वरूप है, देखो बनाना नहीं, कुछ नहीं करना है, वो है उसी को जानना है, जो सहज स्वरूप है उसका परिज्ञान कराए, यानी उसी का सर्वांगीण ज्ञान करे। ज्ञान करने के लिए ज्ञान भी अपना है, हर समय हाजिर है, यानी मैं स्वयं सहज स्वरूप, वो स्वयं सिद्ध ही, वो बना बनाया है, इसे कुछ नहीं बनना, कुछ करना नहीं, कुछ नहीं करना है, कोई वहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, उसको जानना है मैं अपने आप किस स्वरूप वाला हूं। पर उपाधि के संबंध से जो बात गुजरती है उसको नहीं कह रहे, क्या कहा? पर उपाधि है ने? कर्म क्या, उदय की उपाधि, उसमें क्या हो रहे, राग द्वेष हो रहे, उसकी बात नहीं कर रहे, वो मेरा स्वरूप नहीं है, वो मेरा सहज स्वरूप नहीं है, उसको औपाधिक भाव कहते हैं। तो पर उपाधि के संबंध से जो बात गुजरती है उसको नहीं कह रहे, वह मेरा स्वरूप नहीं है, वह ने वो राग द्वेष जो है, मोहादि जो है, मोह राग द्वेष, यानी जितने विभाव भाव है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। जो पर निमित्त पाकर बात आती है वह मेरा स्वरूप नहीं है। भले जीव स्वयं स्वरूप परिणमित हो रहा है, उसका अपराध है, फिर भी वो उसका स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप यह है जो मुझ में अनादि से अनंत काल तक स्वयमेव सहज स्वतः बना है, बनाना भी नहीं, बना है, बनाने कोई उसको आदि नहीं है, स्टार्टिंग नहीं है, है बस स्वयं सिद्ध, जिसको हम कहेंगे क्या है मेरा स्वरूप, क्या है कि जो मुझ में अनादि से अनंत काल तक बस, और वो सहज है, स्वतः सिद्ध है, वह स्वरूप है चैतन्य शक्ति प्रतिभासात्मकता। प्रतिभास कहने से वो ज्ञान दर्शन दोनों आ गए, इसलिए उसको ले लिया। अपने को केवल ज्ञान मात्र समझे, केवल यानी सिर्फ, ओनली, मैं केवल ज्ञान मात्र हूं। कुछ कष्ट हो रहा है क्या इतना मानने में? मैं केवल ज्ञान मात्र हूं, इसका अर्थ यह है कि मैं देह रूप भी नहीं हूं, किसी कामकाज वाला नहीं नहीं हूं, परिवार वाला, मकान वाला, वैभव वाला, पोजीशन वाला भी मैं नहीं हूं। गुरुदेव कहते कितना वाड़ा बढ़ गया, धनी गरीब मूर्ख पंडित भी मैं नहीं हूं, वाता ना छड़ाला में, किसी संप्रदाय वाला भी मैं नहीं हूं। अरे शरीर वाला भी नहीं, तो हमने अपने को उस कल इसका पोम का मान लिया। पुण्यात्मा धर्मात्मा कितने ही विशेषण लगाते जाओ, धर्मात्मा कहते ना, पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, उन विशेषणों से जो भेद ज्ञात होता है वह भी मैं नहीं हूं। वो भेद क्योंकि वो राग के कारण वो भेद बना, ये किसी को क्रोधी कह दिया, किसी को धर्मात्मा मान लिया। मैं तो एक ज्ञान स्वरूप हूं, इतना मान सकते हैं क्या हम सही ढंग से, ईमानदारी से? अर्थात फिर अन्य प्रकार का विकल्प जगे श्रद्धा में, पूरी तौर से यदि यह श्रद्धा से जीत मिलेगी, वह प्रकाश मिलेगा जिसके अनुभव में सत्य सहज अनंत आनंद बसा हुआ है, वो भी वही सही आनंद है, वो सहज होता है, ज्ञान भी सहज और आनंद भी सहज। देखो ये जानने और मानने में क्या कष्ट है, उल्टा तो आनंद ही आनंद है, पर उतना नहीं कर रहा है, बाकी सब कुछ करने के लिए तैयार है। अभी ये बात आई, क्या क्या मान रहा है अपने को, परिवार वाला, धन वाला, बच्चे वाला, गरीब है, धन है, मूर्ख है, पंडित है, वो देखो ना क्या क्या माना अपने को, मूर्ख पंडित है लिखा ना। लिखा है ना, लिखा है, धनी गरीब मूर्ख पंडित भी मैं नहीं हूँ। हमें तो कुछ ना कुछ अपने को मान के बैठते हैं, नहीं नहीं मैं स्त्री हूँ, नहीं मैं माँ हूँ, नहीं मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, फिर भी चल रहे ना, जो भगवान ने उसके पीछे महिलाओं को दर्शन क्यों नहीं, अरे बाबा क्या क्या चलता है दुनिया में। 54 नंबर तीसरी लाइन, एकमात्र निजोपयोग की हितकारिता। देखो इतना सरल स्वाधीन और सहज मार्ग है, परंतु इसको छोड़कर दुनिया भर की सब चीजें करने को तैयार है, और इसको मानने को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये कितनी सरल बात है, क्योंकि पर की तो हम पर में कुछ चलता ही नहीं, अपना बिल्कुल नहीं चलता, विकल्प दिन रात सारे पर के संपर्क संबंधी विकल्प हो गए, या धन संबंधी, घर संबंधी, बच्चों संबंधी, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या, पूरा दिन इसी में चला जाता है, और फिर रात में लगता है कहाँ गया पूरा, गया समय तो फिर वापस तो आने वाला नहीं है। अभी हमारा जितने हम समयों की आयु लेके आए उसमें तो कुछ बढ़ोतरी तो होने वाली नहीं है। अब जो हमारे 24 घंटे गए सो गए, अभी फिर वापस नहीं आने वाले, ख्याल में आती है, और पता नहीं अभी कितना समय बाकी है, है निश्चित, पर हमें पता नहीं है ना कितना है। कितना भी क्यों ना हो, जितना मैक्सिमम हम इसमें लगा सकते वो लगाना है। उसके लिए जो कुछ चालू काम काज छोड़कर बैठना नहीं है, ये तो अपनी धारा निरंतर चल रही चलनी चाहिए। अपने को क्या मान के बैठते हैं, हम क्या मान कर ये सब चल रहा है, उसी वक्त हम अपने को मैं जानने वाला तत्व हूँ ऐसा मानेंगे तो बाकी कार्य चलते रहेंगे। संयोग, क्योंकि संयोग तो आपके छुड़ाने से छूटेंगे नहीं, आपको लाने से, वो आपके लाने से आएगी नहीं, वो तो अपनी योग्यता से आएगी और चले जाएगी। आबेल, हाँ वही तो कह रहे ना, आबेल मुझे मार का अर्थ क्या होता है, अपने पर लाद लेना, यानी जिसको बच्चा नहीं है तो गोद लेते तो हम कहेंगे आबेल मुझे मार, चलो हाँ ऐसी बात भी, या अन्य भी कोई इसी तरह से कहावत हो। देखो अभी यहाँ पढ़ते हैं, एकमात्र निजोपयोग की हितकारिता, निज का उपयोग करना है, यानी अपना ज्ञान उपयोग अपने में ही लगाना है। हे आत्मन, देखो कैसे संबोधन भी करते आत्मन कहकर, हे बच्ची, हे बेटा, हे युवा, हे धनवान, ऐसा कुछ नहीं पुकार है, हे आत्मन, हो सकता है अपना स्वयं को संबोधित कर रहे सामने वाले को, हे आत्मन कहने से सब आ गए उसके अंदर। यदि शाश्वत आनंद चाहते हो तो, शाश्वत कायम टिकने वाला, हाँ, चित्त में यह श्रद्धा लेनी होगी कि परिजन मेरे कुछ नहीं है, उनको जाके बताने की जरूरत नहीं है, अपने मन में रखना है, अनुमात्र भी मेरा कुछ नहीं है, ऐसी श्रद्धा होगी तब अपने आप का स्वरूप अपने को नजर आएगा। क्योंकि अनुमात्र कहने से वो सारे पुद्गल परमाणु, तो पुद्गल स्कंध ही तो दिख रहे हैं हमको सारे, जो अनुभव में आ रहे हैं, अनुभव ने जानने में आ रहे हैं। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रखी जा सकती, कपड़े में एक सुई एक साथ दोनों ओर सी नहीं सकती, क्या कहा, वो सुई एक उसका नोक अंदर डालेंगे तो एक ओर से सी सकते हैं, दोनों ओर से नहीं, ऐसा ऐसा नहीं सीखते हम उसको, एक ही ओर से सीते हैं। एक मुसाफिर एक बार पूरब और पश्चिम दोनों दिशाओं को नहीं जा सकता, एट ए टाइम की बात है। इसी प्रकार एक उपयोग में भोग भाव और धर्म भाव ये दोनों ठहर नहीं सकते। यानी भोगने की भी रुचि है और धर्म भी की रुचि है, ऐसा नहीं हो सकता। संसार का सुख भी लिया जाए और मुक्ति का उद्यम भी करते जाए, ये दोनों बातें नहीं हो सकती। आप हाँ देखो आपको, देखो देखो देखो, दोनों की रुचि एक साथ नहीं होती, एक समय में नहीं, जिसको जो रुचि है एक साथ नहीं होती। अभी यानी थोड़ी टाइम इसकी रुचि थोड़ी तो उससे कुछ नहीं काम होगा, निरंतर एक धारा रुचि रहेगी तो ही वो तो चले काम होगा। दूसरी बात, प्रश्न ऐसा भी आपको हो सकता है कि हमने इतने प्रथमान योग पढ़े हैं, उसमें भी कितने वो तो राजा चक्रवर्ती भी हुए और छह खंड जीतने को भी गए, वो भी तो सम्यक दृष्टि थे कि नहीं, तो आत्मा की रुचि थी कि छह खंड जीतने की रुचि थी, यानी उसके बाह्य क्या कर रहे हैं उसको आचरण को नहीं देखना है, रुचि की बात है। यहाँ क्या लिखा देखो, संसार का सुख भी लिया जाए और मुक्ति का उद्यम भी करते जाए, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। दो काम नहीं हो ये सयाने, भोग विषय और मोक्ष में जाने। हाँ वो तो जो अन्यत्र रखड़ेंगे तो रखड़ेंगे तब तक संसार में, चक्रवर्ती भी तब तक वो चक्रवर्ती पद पर रहते रहते तो मोक्ष नहीं जा सकता, वो रुचि छोड़कर आत्म कल्याण करेगा, आत्म स्थिरता करेगा, मुनि होगा तब मोक्ष जाएगा। हाँ गृहस्थ अवस्था ऐसी है कि अभी उसके पंचेंद्रिय के विषयों से वो छूटा नहीं है, अविरत सम्यक दृष्टिपन सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, परंतु आगे बढ़ने के लिए वो विषय रुचि छूट कर ही आगे बढ़ेगा, उसको साथ में लेके नहीं जा सकता, ये कहना है। वह ज्ञानी संत धन्य है जो समागम में घर में रहते हुए भी अपने आप में यह श्रद्धा बनाए हुए है कि मैं आत्मा तो ज्ञान मात्र हूँ। ज्ञानी संत, संत यानी वो तो समय दृष्टि जीव, यानी गृहस्थी की बात चल रही है, मुनियों की नहीं, मुनि तो घर में नहीं रहते हैं, तो ये समागम में घर में रहते हैं, यानी समय दृष्टि जो है, और श्रद्धा में क्या है, मैं आत्मा तो ज्ञान मात्र हूँ। बाहर से दिखने वाले तो वो तो खाता पीता नजर आ रहा है, बच्चों के साथ हंसी मजाक भी कर रहा है, सब बातें चल रही है, परंतु उस समय भी उसके ये मैं ज्ञान मात्र हूँ ऐसी श्रद्धा उसकी निरंतर चल रही है। देखो कोई रोल करता है ना, ये आर्टिस्ट पिक्चर में हीरो हीरो हो या अन्य जो कोई है, तो वो रोल के साथ कितना एकमेक होकर बिल्कुल वैसा ही सोचना चल रहा है, वैसे एक्टिंग चल रही है, पर क्या अपना नाम वाम गाम सब भूल गए क्या उस समय, उसके प्रति उसके लिए 5 मिनट समय निकाल कर मैं अमुक हूँ ऐसा रटना पड़ता होगा उसको, ये प्रतीति बनी रहती है, वो बिल्कुल उसका नाम भी नहीं, अपने अपना नाम भी वहां नहीं ले रहा है, बस बिल्कुल वो रोल की तरह, जो कोई भिखारी होगा तो भिखारी का या जो कोई रोल कर रहा है, कपड़े भी वैसे पहने हैं, उसके एक्टिंग भी चल रही है, सोचना वैसा सोचे बिना कैसे वो एक्टिंग करेगी, तो ऐसा ही वो सोच भी रहा है। उस समय भी प्रतीति क्या है, अरे वो कितना तो करोड़पति अब्जोपति है, उसकी प्रतीति नहीं छूटती, और उसके लिए एक कोने में जाके बैठना बैठकर रटना नहीं पड़ता, अरे मैं तो ये हूँ, ख्याल में आए ना। तो ये बाह्य प्रवृत्ति की ओर नहीं देखना है, उसमें अंतरंग प्रतीति की बात है। तो कहते उसमें श्रद्धा बनाए हुए कि मैं तो आत्मा ज्ञान मात्र हूँ, और इसका कर्तव्य तो जानना और देखना मात्र है। कर्तव्य यानी इसका कार्य क्या है, बस जानना देखना, अन्य कुछ नहीं है, तो अन्य कुछ नहीं है तो रसोई बनाने के नहीं बनाए, बोलो रोटी बनाने का नहीं बनाना, बोलो हाँ, ये पहले तो मैं बना रही हूँ मानता था, अभी क्या मानने हो गए, वो कार्य चलेगा, ये तो उसका कार्य उसमें हो रहा है, वह निमित्त रूप से जो जीव है उसके हाथ है वो सब चलेगा, परंतु उस समय भी ये जीव क्या कर रहा है, जानने का काम कर रहा है, क्या जान रहा है, रोटी भी बन रही है और रोटी बनाने का विकल्प भी उसमें चल रहा है वो भी जान रहा है, और मात्र विकल्प नहीं बनना बन रहा है, वो तो कार्य रूप परिणमित भी हो रहा है, हाथ और शरीर वगैरह, इस तरह से पूरा भेद ज्ञान चलना पड़ेगा। ऐसे अक्रिय स्वभाव की जो प्रतीति रखे, अक्रिय यानी किसके लिए अक्रिय, पर का और राग का अक्रिय है, अरे अपना तो पर्यायों का कर्ता स्वयं है, अनंत गुणों का स्वयं परिणमन करने वाला है, ऐसे अक्रिय स्वभाव की जो प्रतीति रखे है और घर में रहते हैं, वे यद्यपि काम सभी करते जाते हैं, इस नए से हम कहेंगे वो सभी काम कर रहे हैं, तो तो करते हुए भी वो केवल जान रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करते लगता कि मैं कर रहा हूँ, वो तो अपने को तो जानने वाले ही वहां उस समय भी अनुभव कर रहे। तो काम सभी करते जाते हैं तो भी ऐसे पुरुष जल से भिन्न कमल की नाई यानी कमल की भांति शोभा पाते हैं। जल में भिन्न कमलवत ज्ञानी की रीति, भांति कमल की भांति, कमल के समान। देखो यह कमल जल से ही पैदा हुआ, जल से ही निकला और जल से ही इस कमल का पोषण हो रहा है। मूल में जल न हो तो कमल न उत्पन्न हो, न हरे भरे रहे। जैसे जल के प्रताप से इस कमल का जीवन है, यह कमल जल को छोड़कर जल से कितना ही ऊपर रहा करते हैं, ऐसे ही गृहस्थ भाव में इस गृहस्थ की उत्पत्ति भी इसी गृहस्थी में होती, इसका पोषण भी इसी गृहस्थी से चल रहा है। और धर्म साधना के लिए जितने जो कुछ साधन और समस्त साधन और वातावरण पा रहा है, इस गृहस्थ कार्यों की वजह से पा रहा है, तिस पर भी यह ज्ञानी गृहस्थ उन समस्त साधनों से, गृहस्थी से, परिजन से, मोह आदि भावों से अलग ही रहता है, विरक्त रहता है। यानी उसी में उसमें रहते हुए उनसे विरक्त है। वो तो बाहर से दूसरे लोगों को तो नहीं कोई दिखेगा, उसको अंतर में पता है कि हम कितना उससे जुदे हैं। ऐसा कोई अद्भुत ज्ञान पुंज इसने निरख लिया ने देखा, अनुभव किया, पा लिया, जिसके प्रसाद से इसकी एक ऐसी दुनिया बस गई कि जिसमें आनंद ही आनंद बसा है, आकुलता का कोई काम नहीं है। धर्म का महत्व, निज ज्ञान स्वभाव का दर्शन करना, निज ज्ञान स्वभाव का आश्रय करना, यही धर्म है। जैसे हमने बचपन से या हमारे ऊपर आदत संस्कार पड़े कहो, या हमने ऐसी आदत बनाई कि भगवान का दर्शन सुबह उठते ही पहले वो कर लेते हैं, यानी चैन नहीं पड़ती भगवान के दर्शन न हो तो। कभी प्रवास में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो ऐसा अंदर कैसा लगता है, तो कहते ऐसा लगता है कि निज ज्ञान स्वभाव का दर्शन करना धर्म तो वह है। निज ज्ञान स्वभाव का आश्रय करना यही धर्म है। इस धर्म की महत्ता को बड़े बड़े आचार्य पुरुष भी बताने में असमर्थ हैं। इस धर्म को तीर्थंकर, गणधर, ऋषि संत ऐसे ऊंचे ऊंचे पुरुषों ने धारण किया है। यह प्रभु द्वारा प्रकट किया गया धर्म सबको प्रतीति करने योग्य। ये प्रतीति की बात अभी बताई ना, जो एक्टर है वो उसके अपनी जुदी प्रतीति चल रही है, भले एक्टिंग दूसरा चल रहा है। धर्म परिणामों से उत्पन्न होता है, यानी परिणामों में ही वो है ना सारा। बाह्य क्रियाएं तो इतने काम में सहयोग देती है कि उल्टी क्रियाएं जो की थी, कौन सी, अधिक विषय साधन, आरंभ, परिग्रह और अनेक, उन खोटी क्रियाओं, उन खोटे आशयों से विराम मिले, इसके लिए व्यावहारिक धार्मिक क्रियाएं हैं। परंतु ऐसे ये भोले जीव है उसी को धर्म मान लेते हैं। पहले बहुत उल्टा कुछ काम किया है खोटे परिणामों के साथ, अब कहते वो क्रियाएं सुलझाने से थोड़ा प्रयत्न कर रहे हैं कि जो पहले जो खोटा सब किया था, विषय साधन, आरंभ, परिग्रह वगैरह वगैरह, उससे विराम करने के लिए, उससे हटने के लिए ये क्रियाएं करने का उपदेश दिया था, इसको व्यावहारिक धार्मिक क्रिया कहते हैं। किंतु धर्म मिलता है एक शुद्ध जानन विकास मात्र स्वभाव के आश्रय से। ये ज्ञान का कैसा विकास चाहिए, वो स्व को जानते हुए प्रकट होना चाहिए ज्ञान, तभी धर्म प्रकट होगा। और ये सारी क्रियाएं बस ये खोटी क्रियाओं को छुड़ाने के लिए, ये क्रियाओं को करने के लिए बताया, उन क्रियाओं से बिल्कुल धर्म नहीं होगा, या जरा जल्दी नजदीक जाएगा धर्म के पास वो भी नहीं है। जो कुछ साधन होगा धर्म होगा, वो अपने शुद्ध जानन स्वरूप को जानने से होगा। जिसने लक्ष्य को जान दिया है वह पुरुष तो मार्ग में सफल हो जाता है, और जिसने लक्ष्य को नहीं जाना, मूल तत्व को नहीं पहचाना, वह सफल नहीं हो पाता। क्योंकि इनको क्रियाओं को करते हैं और दूसरे नहीं कर रहे, और हमने कर लिए तो अपने को बड़ा भी मान लेते, और ये क्रियाएं करते रहने से सम्यक दर्शन होगा, मोक्ष होगा, इसे मान्यता है उनके। और परस्पर उपदेश भी क्रियाओं का ही कर रहे हैं कि ये इतना व्रत करो, ये करो, ये करो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, और लोग भी भोले लोग इसको, परंतु उसमें कुछ नहीं मिलता है। तो कहते मूल तत्व को नहीं पहचाना तो ये कुछ सफल नहीं होगा। देखो वो स्वयं क्षुल्लक पद पर थे, अंगीकार कर रहे, परंतु मूल तत्व को पकड़ कर आगे की बात करें तो उनके आजू बाजू में बहुत ऐसे सारे देखे होंगे ना कि मूल तत्व को तो कुछ है ही नहीं है अंदर, और बस क्रिया ही क्रिया अंगीकार की। 55 नंबर, अज्ञान चेष्टा से कार्य की असिद्धि। चेष्टा ने प्रयत्न, एक बार किसी गांव से 3 बजाज दूसरे गांव के लिए चले, अपना अपना घोड़ा लेकर कपड़ा खरीदने के लिए। रास्ते में रात होने लगी तो एक पेड़ के नीचे वे बजाज ठहर गए। उस पेड़ पर बंदर रहा करते थे, जाड़े के दिन थे, सो जाड़े से बचने के लिए उन्होंने एक उपाय बनाया कि आसपास के खेतों से जो बाड़ लगी थी उसको उठा उठा कर उसी पेड़ के नीचे इकट्ठा किया। इसके बाद चकमक से आग सुलगा कर मुख से फूंक कर उसको जला दिया। फिर जैसे तापने वाले लोग तापा करते हैं, कुकुरु आसन लगाकर और हाथ फैलाकर इस तरह बैठकर वे तापने लगे। ये सब काम ऊपर चढ़े हुए बंदर देख रहे थे। व्यापारी लोग तो सुबह चले गए। बंदरों ने दूसरे दिन सोचा, वे लोग भी हम जैसे ही थे, हमारे जैसे हाथ पैर उनके थे, उन्होंने जो अपना जाड़ा मिटा लिया था, क्या हम लोग नहीं मिटा सकते हैं? उन सब बंदरों ने भी अपना जाड़ा मिटाने के लिए उद्यम किया। आसपास के खेतों से बाड़ उठा उठा कर ले आए और उसी पेड़ के नीचे इकट्ठा कर दिया। अब बंदर कहते कि इतना काम तो कर लिया पर अभी जाड़ा नहीं मिटा। तो उनमें से एक बंदर बोला, अभी जाड़ा कैसे मिटे, अभी तो इसमें लाल लाल चीज तो पड़ी है ही नहीं। सो वे बंदर आसपास जो बहुत सी पट बीजना जुगनू उड़ रही थी, सो उन्हें ले आए और बाड़ में डाल दिया। ये लाल लाल होती है ना, अब हाँ आ गया। अब बंदर कहते कि अभी जाड़ा नहीं मिटा। तो एक बंदर बोला, अभी जाड़ा कैसे मिटे, उन्होंने लाल लाल चीज डाली थी, फिर मुख से फूंका भी था, वे सब मुख से फूंकने लगे, अभी जाड़ा ना मिटा। तो एक बंदर कहता है, वे लोग यूं कुकुरु आसन लगाकर हाथ फैलाकर बैठे थे। वे सारे बंदर भी उसी तरह से कुकुरु आसन लगाकर हाथ फैलाकर बैठ जाते हैं, फिर भी जाड़ा नहीं मिटता। अरे जाड़ा कैसे मिटे, मूल तत्व जो आग है उसका तो पता ही न था। तो ऐसे ये सारी क्रियाएं तो करने लगे, मूल तत्व की तो पहचान नहीं है। ऐसा ही है, तो बंदर जैसे दूसरों के देखा देखी करते हैं ना, ऐसे उपमा दी है, देखा देखी व्रत आचरण करने वालों को। मूल के परिचय का प्रभाव। भैया सच जानो कि मूल तत्व का पता न होने से कितनी भी क्रियाएं आचरण किए जाएं पर उनसे सिद्धि नहीं होती। जो करते उनको ऐसा लगता है हम ये कर रहे हैं ना तो हमको जल्दी जल्दी सिद्धि हो जाएगी, उनको सिद्धि होगी पर मूल तत्व का विचार करने से होगी, वो व्रतों के कारण नहीं होगी। यानी अगर मान्यता कि व्रत करता हूं इसलिए मुझे जल्दी हो जाएगी तो ये मान्यता इटसेल्फ गलत है। वही तो हमने बोला था ना, हमने में सिद्धि सिद्ध सिद्ध, परंतु सिद्ध क्या है, उनके गुण क्या क्या है कुछ पता नहीं है। तो खाली कुछ अक्षरों को मुख से रटने से मात्र से कुछ नहीं होने वाला है, उसका भावभाषण भी नहीं है। अपना मूल लक्ष्य यह होना चाहिए कि मैं ज्ञान प्रकाश मात्र हूँ, जानना मेरा कार्य है, स्वभाव है, यही मात्र मेरा वैभव है, यह शुद्ध आनंदमय है, मुझे तो केवल ज्ञाता दृष्टा रहना है। किसी भी परिस्थिति में मेरे में भीतर यह श्रद्धा बन जाए कि राग द्वेष के लिए कोई मुझे प्रेरणा न करे, मेरे में मोह ममता का परिणाम न जगे, मैं तो ज्ञाता दृष्टा ही रहना चाहता हूँ, यह जीवन का लक्ष्य बन जाए तो आत्मा का उद्धार सुगम है। इसमें बड़ा बलिदान है, त्याग है, यह सब आंतरिक तपश्चरण है, इसे चैतन्य प्रतपन कहते हैं। केवल बाह्य में उपवास कर ली वो तप मानते हैं लोग, वो तप नहीं, ये प्रतपन है, अंदर ही अंदर चैतन्य 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 हो रहा, उस रूप ही रहना है। यह तपस्या करते बने जिस ज्ञानी पुरुष से, उस ज्ञानी ने अपना मानव जीवन सफल किया समझिए। और जो कायर होकर अपने या दूसरे के शरीर में राग भाव करे, उसने तो अपना यह अमूल्य जीवन खो दिया। जैसे कोई पुरुष समुद्र के किनारे उड़ते हुए कौवे को और उड़ाने के लिए अपने हाथ में रखा हुआ रत्न फेंक दे, यो ही समझो। देखो ऐसा उदाहरण आता है, नौका पर जाते अंदर समुद्र में, बीच समुद्र में चले जाते, आसपास कोई जमीन भी नहीं है, और कौवा जो वहां बैठा था वो नाव पर ही बैठा है, वो भी नाव के साथ अंदर तक दूर महासागर में गया। अब वहां उसको उड़ाने के लिए, वो काव काव करता है तो इसको बहुत चिढ़ाती है, तो उसको उड़ाने के लिए अमूल्य रत्न उसको फेंक कर मारे तो क्या होगा, उस रत्न का समुद्र में गिर जाएगा, और कौवा उठ कहाँ जाएगा, फिर वापस आने वाला ही है, क्योंकि वो थोड़े ही पानी में अन्यत्र चला जाएगा, अन्य कोई जमीन भी नहीं है। तो इसको कहते कि अपना मानव जीवन ऐसा ही वो व्यर्थ खो दे रहा है। यो ही समझो कि यह दुर्लभ मानव जीवन व्यर्थ खो दिया। यह निर्णय अपना बनाओ, निशंक होकर, साहसी बनकर, मैं तो केवल ज्ञान स्वभाव मात्र हूं। केवल और ज्ञान में अंतर चाहिए। और मेरे को एक काम यही रह गया है कि मैं उस ज्ञान स्वभाव का ज्ञान करता हुआ निर्विकल्प हो। काम क्या करना है, ज्ञान स्वभाव तो है ही मेरा, और उसी को जानता रहूं, इसे निशंक होना चाहिए कि और मुझे कुछ कर ही नहीं मैं सकता, और यही एकमात्र करने योग्य है। इतनी दृढ़ता से अंदर निर्णय हो जावे, कहते मैं उस ज्ञान स्वभाव का ज्ञान करता हुआ निर्विकल्प हो, यही धर्म पालन है, अन्य कोई धर्म है ही नहीं। जिनकी मुक्ति निकट है, धर्म उनको ही प्राप्त होता है। हमें इसका अंतरंग से यत्न करना चाहिए, किसी को दिखाना नहीं, ये अपने ही लिए है, और अंतरंग में ही होता है ये ज्ञान का, जो चलेगा वहां पर निरंतर ऐसा ही सोचना वगैरह। 97 शरीरेस्मिन् सर्वा शुचिनि बहु दुःखेऽपि निवसन् व्यरं सिन्नो नैव प्रथयति जनः प्रीतिमधिकाम् इमां दृष्टव्याप्य स्वस्मादिनमयितुः मेनं च यतते यतिर्याताख्यानैः परहितरतिं पश्य महतः। इमाम दृष्ट्वा दृष्ट्वा चाहिए, दृष्टवाप्य नहीं, इमाम दृष्ट्वा अपि इमं दृष्ट्वाप्यस्मात् विरमयितुम्। एक मिनट, ये बराबर है क्या? आपने देखा दृष्ट्वा, मैंने भी बोला ना अभी दृष्ट्वा चाहिए, दृष्ट्वा नहीं दृष्ट्वा। इमाम यमरस अब यहाँ का अर्थ देखते हैं इस टोडरमल जी साहब का। वो शिखरिणी छंद था, सर्व प्रकार अपवित्र और शारीरिक मानसिक बहुत दुख जा विषय पाइए, ऐसा ही शरीर विषय तिष्ठता थका यानी तिष्ठता हुआ जन है सो विरक्त नाही हो है। बहुरी यहू जन इस शरीर को देखी अधिक प्रीति को नाही विस्तारे है कहा अपितु तो विस्तार रही है, यहू काकाख्यान है। सो यहू जन तो ऐसा है, बहुरी मुनि है सो इस जन को जान्या हुआ सार उपदेश तिनी करी शरीर तय विरक्त करने को यत्न करे है। सो महंत मुनि के ऐसी परहित करने विषय अनुराग है ताकू तू देखी। काका अख्यान यानी यानी ऐसे खोटा। भावार्थ, जैसे परजीव भला माने अपना अभिलाष सदै तैसे तो सीख देने वाले बहुत है, परंतु मुनि ने के ऐसा परहित विषय अनुराग है, ये जीव तो शरीर के शरीर को अपवित्र दुख का कारण प्रत्यक्ष देखे है तो भी याते विरक्त न हो। यानी मुनि क्या सोचते हैं, अरे ये जो सारे जीव है तो शरीर इतना अपवित्र है दुख का कारण है फिर भी इनसे विरक्त नहीं हो रहे हैं, यही विषय अति प्रीति करे हैं। और मुनि है सो जैसे दीपक विषय पड़ता पतंग को दयावान बचावे तैसे या को उपदेश दे शरीर ते विरक्त करे है। ये समझ में आते ना, ये जलती हुई जो मोमबत्ती कोई है अग्नि दीप शिखा है तो उसमें तो पतंगे या अन्य जीव आके उड़कर आके मरते हैं वो ज्वाला में, ऐसे ही ये सारे जीव कैसे है तो शरीर के प्रति प्रीति करके हाँ ये भव नष्ट हो जाता है। यद्यपि आपको उपदेश कड़वा भी लागे है क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, हाँ भोग अच्छे लगते हैं, ये यथार्थ उपदेश अच्छा नहीं लगता है, तथापि मुनि जाने हैं यह बहुत दुखी हो सी ताते दया करी उपदेश दिया ही करे है। यानी वो मानते कि यही उनके कल्याण की बात है फिर भी बारंबार उपदेश दे रहे, वो भले जीव को अच्छा नहीं लग रहा है कड़वा लग रहा है। उन मुनिनी के अन्य किछु अभिलाष नहीं, यानी उनके कोई उसके पास कोई अपेक्षा नहीं कि मैं इतना इसको कल्याण का उपदेश दूं तो ये मेरा कुछ आहार दान देके ऐसा कुछ, ऐसा कोई उनके उसमें अपेक्षा नहीं होती है। देखो महंत पुरुष ऐसे पर उपकारी हो है, यानी वो ऐसे उपकारी है कि उसके रिटर्न में उनको कोई अपेक्षा नहीं उनके तरफ से, वो तो जानते हैं कि जीव दुखी क्यों है और उसका उपाय वो बता रहे हैं। अब देखो ना आत्मानुशासन में कितने अलग अलग ढंगों से इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 56 पेज पर ये श्लोक के नीचे शरीर की अशुचि और आसक्ति, यह शरीर सर्व ओर से अशुचि है, अशुचि यानी अपवित्र तथा शारीरिक और मानसिक अनेक दुखों का यह साधन है। शरीर को देख देख कर मानसिक भी दुख होता है ना, अरे मैं गोरा क्यों नहीं हुआ, काला क्यों है, मैं ऐसा अंधा क्यों है, मैं लंगड़ा क्यों है, जो कुछ शरीर के है तो ये मानसिक दुख भी है शरीर को देख देख कर हो रहा है, मैं ठिंगना क्यों हूँ, मैं ऊंचा क्यों नहीं हुआ, अन्य जो जिसको जुटा है वो। तो शारीरिक और मानसिक अनेक दुखों का साधन है। शारीरिक दुख है कोई रोग है, पीड़ा है, जो अन्य युग में बात है। लोगों की सर्वाधिक प्रीति शरीर से है, क्योंकि वही मैं हूं मान लिया ना, तो सर्वाधिक प्रीति तो इसी से है। मोहिजन सब कुछ त्याग सकते हैं, पर इस शरीर की प्रीति और शरीर के त्यागने में उनके भाव नहीं होता। कदाचित भी कोई धन हानि करने आ जाए तो वह परिजनों को बचाने का यत्न करेगा। परिजनों पर कोई आक्रमण करने आए या कोई उनकी हत्या करने आए तो सबसे पहली बात अपने प्राण बचाने की पड़ेगी। सर्वाधिक प्रीति पुरुषों की शरीर से है, पुरुषों की नहीं जीवों की। इस बात का कोई निर्णय नहीं करना है, परीक्षा लेनी हो तो अभी ले लो, किसी की चुटकी भर लो, चोटी पकड़कर खींच लो, अथवा किसी के भी पास यदि आलपिन हो तो चुभो दो, या खुद अपने चुभो लो, या अन्य किसी के चुभो दो, तो पता पड़ जाएगा कितनी ममता है इस शरीर से, कितना खोटा मोहजाल है। और एक और देखो मुन मुनिराज को, जिनको शेर और सियालिनी खाए, शत्रु परेशान करे, और तो क्या, एक मुनिराज के शत्रु ने उनकी खाल को चाकू से छीला था और उस पर नमक छिड़कता जाता था। ऐसी ऐसी कठिन बाधाओं के अवसर में भी वह कौन सा तंत्र मंत्र है, वह कौन सा जादू है जिसके कारण उन्हें रंच वेदना भी नहीं हुई और वे अपने सत्य व परम आनंद रस में तृप्त रहे। वह तंत्र मंत्र है अपने आप का जितना स्वरूप है उतना ही मानने का। शरीर मैं हूं मान लिया तो उसमें जो कुछ उसकी अवस्थाएं होती वो मेरी हो रही मान मान कर दुखी हो रहा है। कोई पुरुष टूटी हुई झोपड़ी में रहता है, उसे उस झोपड़ी में बहुत ही अनुराग है। झोपड़ी की जरा सी ईंट खिसक जाए वह उसमें ही चिंता करता है, शोक मानता है। यदि किसी की हवेली की छत भी गिर जाए तो इस झोपड़ी वाले को कोई शोक नहीं होता। हम नहीं देखते, अरे टीवी पर रोज कितने कहां भूकंप होता है, कहां कहां क्या क्या हो जाता है, और अपने यहाँ जरा कुछ कुछ गिर जाए, कुछ कांच फूट जाए तो कैसा हो जाएगा, है ना। इसका कारण यह कि झोपड़ी वाले को अपनी झोपड़ी में आत्मीयता है और उस हवेली में आत्मीयता नहीं, यानी यह मेरा है ये जो भाव है उसके कारण उसको ऐसा होता है। सकल क्लेशों का निमित्त शरीर और इस देह के साथ इस जीव का कितना विकट बंधन है, यह बंधन ही समस्त दुखों का मूल है। हम देह में बंधे हैं, हमारी मूर्त दृष्टि बन गई है, हम पैनी ज्ञान छेनी से अपने आप का भेद नहीं कर पाते। छेनी समझते ना, छेनी यानी वो तो लकड़ी में ऐसे डाल के ऐसे ऊपर से ठोकते हैं तो उसके दो हो जाते हैं ऐसे, कुहाड़ो जुदा, वो कुहाड़े से तो तोड़ते हैं ऊपर से, छिन्नी ने उसके हथौड़ा छिन्नी पर मारते हैं ऐसे, ये छिन्नी ये आगे पैनी होती है तो उसके दो फाड़े हो जाते हैं ऐसा, तो बिल्कुल वो सांध में रखेंगे ऐसा ऊपर से ठोकते हैं, हाँ दो टुकड़े, वो कहाँ रखना और क्या करना उसकी भी ट्रिक होती है। हम पैनी ज्ञान ज्ञान रूपी छैनी से किसमें डालना, ज्ञान जुदा और राग जुदा करना है, अपने आप का भेद नहीं कर पाते। ये तो देह में अपने को अभी देह से बंधा हुआ मानते हैं, देह में ही मानते हैं, तो राग के साथ तो और कितनी वो तो छिन्नी अलग है, उसके साथ भेद ज्ञान करना तो बात और आगे की। तो ये शरीर के साथ हम मूर्त दृष्टि से बंधे हैं तो अपने सहज प्रकाश में मग्न नहीं हो पाते, इसी अपराध के कारण विकल्प जाल चल रहा है। अपने आप को ज्ञान मात्र नहीं माना है, मैं शरीर हूं मानते, इस तो उस संबंधी विकल्प चलते ही रहते हैं। अनेक दुखों का निदान ही यह शरीर है, अनेक क्या, जितने भी जग में क्लेश है उन सब क्लेशों का मूल कारण यह शरीर है। रोग भूख आदि का कारण शरीर का संबंध है। हमें चिंता होती है कोई रोग आ गया, अरे क्या होगा अभी, वो तो किसको है, ज्ञान को है कि नहीं? रोग किसको हुआ? ज्ञान को। किसको हुआ? शरीर को हुआ है। कोई भी गाली सुनकर, अपयश की बात सुनकर जो अपमान अनुभव किया जाता है, उसका मान भंग लगता है उसको। क्यों? मैं ये शरीर रूप हूं ऐसा मानता है। उसका कारण यह है, इस शरीर पिंड को माना है कि यह मैं हूं। बस इस देह की ममता के कारण इसने अपमान महसूस किया और कहेगा भी वो दो कौड़ी का आदमी मुझे ऐसा कहता है। ऐसा होता है ना, दो टके का, दो कौड़ी का, जो कोई ना। यदि यह भान होता कि मैं तो नाम रहित, पहले भी बात है ना, ये इसने अपने नाम के साथ भी एकत्व बना लिया। इतना इस देह का नाम रखा हमारे माँ बाप ने और उस नाम में भी एकदम अहम बुद्धि हो गई उसकी। मैं तो नाम रहित, ज्ञान मात्र, आकाशवत, क्योंकि अमूर्तिक हूं ना, आकाशवत, निर्लेप, किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, केवल ज्योति स्वरूप हूं। ज्योति यानी वो ज्ञान ज्योति। तो वह अपमान क्यों महसूस करता? सुख का मार्ग बहुत सुगम है, स्वाधीन है और अपने में है। पर उस मार्ग पर आने की कला मिले तभी ना, कला न मिले तो यह दुर्गम है। और कोई वो कला सिखाना चाहते तो इसको तो उसकी अरुचि हो रही है। अब यही रुकेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे।